समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज सुबह सवेरे दिल्ली को धुंध की मोटी चादर ने खुद में लपेट रखा था। धुंध इतनी ज्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। ऐसे में अनजाने ही जहन में आया कि क्यों ना आज सवेरे के अपने श्रोताओं से इतनी गहरी धुंध में सुरक्षित ड्राइव करने के कुछ टिप्स साझा कर लिए जाए, क्योंकि आप हमारे प्यारे श्रोता हैं और आपकी सुरक्षा हमारे जहन में रहती है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब कभी धुंध इतनी ज्यादा हो कि कुछ दिखाई न दे रहा हो तो ये ध्यान रखिए, एक तो गाड़ी को धीमी गति से चलाइए और लो बीम हेडलाइट या फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। हाई बीम पर कभी भी हेडलाइट्स नहीं जलाइए गहरे धुंध में। विंडशील्ड और शीशे साफ रखिए, डिफॉगर ऑन कीजिए, गाड़ी को सड़क के किनारे चलाइए बजाय साइड बीच में चलाने के। लेन मार्कर्स पर ध्यान देना भी जरूरी है, दूसरी गाड़ियों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है और अचानक ब्रेक ना लगाएं इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो सिर्फ धुंध के वक्त ही नहीं बल्कि आम तौर पर भी ड्राइव करने के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। पहली ये कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और दूसरी ये कि कार के अंदर तेज म्यूजिक ना बजाएं। तो बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो हमारी ड्राइविंग सुरक्षित रहेगी, हम सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। हमारे श्रोताओं के लिए सुरक्षित ड्राइविंग के ये थे कुछ टिप्स और वक्त है अब कार्यक्रम आज सवेरे बाकायदा शुरू करने का। तो आज इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को बता दूं कि आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
गुड मॉर्निंग नईम एंड हैप्पी न्यू मंथ टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू अस दिस सैटरडे मॉर्निंग।
जी सबसे छोटा महीना
yes,
साल
का। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, दिस इज फरवरी, इट इज द मंथ ऑफ फ्लावर्स, स्प्रिंग एंड लव। सो कीप योर स्पिरिट्स रियली हाई एंड एंजॉय द सीजन, राइट नईम?
जी बिल्कुल।
सो नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर सम न्यूज़ हेडलाइंस।
जी।
Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget 2025-26 in the Lok Sabha today. It will be the second budget of the Narendra Modi government in its third term. Ahead of the budget presentation, the economic survey was tabled in both houses of parliament yesterday, giving an overview of the economy's performance. This will be Finance Minister Nirmala Sitharaman's eighth consecutive budget presentation since taking office in 2019. After presentation of the budget in the Lok Sabha, the copy of the budget will be tabled in the Rajya Sabha. During a pre-budget consultations, Finance Minister held meetings with several stakeholders, including experts and representatives from farmer associations and agriculture economists, trade unions, education and health sector, MSME trade and services, industry economists, financial sector and capital markets. On 1st February 2021, Finance Minister Sitharaman presented the first paperless budget and the digital budget has been presented ever since then. The first part of the budget session will be held till 13th February, while the second leg of the session will be held from 10th March to 4th April.
Union Budget 2025-26.
Tune in to Akashwani News for a special day-long live program on the Union Budget 2025-26.
In-depth analysis by experts.
Special budget bulletins.
Reaction on the budget.
And exclusive interviews.
Tune into Akashwani Gold Channel, 100.1 MHz and other frequencies.
From 10:10 a.m. to 10 p.m. on Saturday, the 1st of February.
विश्व पुस्तक मेला 2025 आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष मेले की थीम हम भारत के लोग हैं, जो भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव को विशिष्ट रूप से दर्शाएगा। 9 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस वर्ष के पुस्तक मेले में रूसी साहित्य आकर्षण का केंद्र होगा। इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, अबुधाबी और कतर सहित लगभग 50 देश शामिल होंगे। मेले में लगभग 2000 प्रकाशक और 1000 वक्ता शामिल होंगे। आज ही राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यान उत्सव का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने बताया कि आम जनता के लिए अमृत उद्यान कल से 30 मार्च तक खुला रहेगा।
तो उद्यान खुला रहेगा 2 महीने, उसके बीच में 4 दिन का हम लोग एक विविधता का अमृत महोत्सव भी हमने रखा है। मैं जो देश के दक्षिणी राज्य हैं उनकी संस्कृति को यहाँ पर दिखाया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। अलग अलग राज्यों की स्टॉल्स होती हैं यहाँ पे और उसमें उनके टेक्सटाइल्स, उनके हैंडीक्राफ्ट, उनका क्विजीन, खाना पीना, उनकी संस्कृति, म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस। जो लोग अमृत उद्यान देखने आ रहे हैं वो सब लोग विविधता का अमृत महोत्सव में भी जा सकते हैं। एक हमारा प्लूमेरिया ट्रीज का गार्डन एक नया डेवलप किया गया है, वो भी कुछ दिन बाद लोगों के लिए खुल जाएगा। उसमें अलग अलग रंगों के प्लूमेरिया ट्रीज हैं जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा कुछ फ्लोरल आर्ट्स हैं जो डिस्प्ले किए गए हैं। एक फ्लोरल क्लॉक है जो कि फंक्शनल है, ट्यूलिप्स और उसके अलावा रोजेस की बहुत सारी वेराइटीज है। 140 से ज्यादा प्रकार के रोजेस हैं यहाँ पे और 80 से ज्यादा प्रकार के दूसरी तरह के फ्लावर्स।
अमरीका के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन, कनाडा और मैक्सिको सहित अमरीका के कई प्रमुख व्यापार भागीदारों पर भारी शुल्क लगाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने बताया कि मैक्सिको अब कनाडा पर 25% जबकि चीन पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क अमरीका में गैर कानूनी तरीके से फेंटनिल के वितरण के आरोप में लगाया गया है। अमरीका में फेंटनिल से कई हजार लोग मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि कनाडा और मैक्सिको को बिना दस्तावेज के अमरीका में आ रहे प्रवासियों और अवैध दवाओं पर रोक लगानी होगी।
The center has announced the addition of 4 new Ramsar sites in India, taking the tally to 89. In a social media post, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that ahead of World Wetlands Day, the government announced that Sakrakotai Bird Sanctuary and Tirthangal Bird Sanctuary in Tamil Nadu, Kichiyapalri Wetland in Sikkim and Udhwa Lake in Jharkhand have been included in the list of Ramsar sites in the country. In the post, Environment Minister Bhupendra Yadav shared that India still stands as a country with the highest number of Ramsar sites in Asia and third in the world. He congratulated Tamil Nadu for becoming the state with the maximum number of Ramsar sites with a tally of 20. He also termed this a special achievement for Sikkim and Jharkhand, which have added their first Ramsar sites.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में आप हमारे पास एक खबर है और वो खबर है महाकुंभ से। तो चलिए सुनते हैं खबरें महाकुंभ से। जी, जैसे कि हमने आपको बताया कि महाकुंभ से जुड़ी हुई उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे पास एक खबर है। तो खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भव्य और दिव्य महाकुंभ विश्व भर से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। विभिन्न देशों के राजनयिक भी महाकुंभ जाएंगे। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ 2025 न केवल भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बन गया है बल्कि यह वैश्विक सांस्कृतिक आयोजन के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। इसके अलावा यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 73 देशों के राजनयिक आज प्रयागराज आएंगे और गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में पवित्र स्नान करेंगे। वे अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। इसके बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से राजनयिक आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को समझेंगे। इसके अलावा वे अखाड़ों की परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति से भी रूबरू होंगे। इससे पहले भी 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भी महाकुंभ का दौरा कर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
और सुभद्रा, अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं।
Yes, starting news from Chennai, the Indian Coast Guard is poised to achieve its target force levels of 200 surface platforms and 100 aircraft by 2030. The statement issued by the ICG in view of its 49th raising day today said that contraband worth over 52,560 crores have been seized in a single year, including the recent record seizure of 6,016 kg of narcotics in a single catch in the Andaman Sea by it. With its motto, Vayam Raksha Maha, it has consistently ensured the safety and security of India's maritime zones. Since its inception, the service has saved over 11,730 lives, including 169 in the past year alone, translates to the extraordinary achievement of saving one life every second day. And Naeem, over to you now for the rest of the news. Sorry, Delhi, I think.
Right? जी, बिल्कुल. दिल्ली से मेरे पास दो खबरें हैं, छोटी छोटी सी. दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एल इसवाज ने बताया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 1,56,14,000 मतदाता मतदान करेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर सुविधा और पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है. 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी में 13,760 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे. और एक और खबर मेरे पास है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में आज से 2 दिवसीय व्यापार और उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इस सम्मेलन का विषय है स्थिरता के मार्ग पर अग्रसर. सम्मेलन का उद्देश्य उद्यमिता और स्थिरता पर चर्चा, नवाचार और अवसरों को बढ़ावा देना है, जिससे उद्योग के अग्रणी निवेशक और महत्वाकांक्षी उद्यमी एक साथ आ सके. और बेंगलुरु से आपके पास जो खबर है वो बताइए.
यस नईम, एज पार्ट ऑफ भारत दर्शन स्टडी टूर, 30 कश्मीरी यूथ विजिटेड बेंगलुरु यस्टरडे. दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड शेयर देयर व्यूज विद गवर्नर ऑफ कर्नाटका थावरचंद गहलोत इन राजभवन. व्हाइल द विजिटर्स शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड एस्पिरेशंस, द एनकरेजिंग वर्ड्स बाय द गवर्नर प्रॉम्प्टेड देम टू परस्यू एजुकेशन, स्किल development and play an important role in national integration. Earlier, they were taken on tour to UR Rao Satellite Center in the city. They were exposed to the complex task of building the satellite and launching rockets into outer space. The Bharat Darshan study tour by Sashastra Seema Bal aims at exposing the young minds to the cultural diversity, scientific prowess and historical significance of our country. Over to you, Naeem.
जी, मुंबई से भी मेरे पास दो ही खबरें हैं. वरिष्ठ भाजपा नेता वेद प्रकाश गोयल की जन्म शती के अवसर पर शनिवार को मुंबई में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के लोक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया. राष्ट्र निर्माण को समर्पित ये कार्यक्रम कांदिवली में हुआ. इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. और एक और खबर मुंबई से यह है कि मुंबई पुष्प महोत्सव, जिसे वार्षिक बागवानी प्रदर्शनी के रूप में भी जाना जाता है, का उद्घाटन आज बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी द्वारा वीर माता जीजाबाई भोसले बोटानिकल गार्डन और चिड़ियाघर में किया जाएगा. इस वर्ष की प्रदर्शनी में फूलों, फलों के पेड़ों, औषधीय और सुगंधित पौधों, लताओं के साथ साथ सब्जियों और मसालों के पौधों का विविध संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा. और हैदराबाद से आपके पास जो खबर है.
यस नईम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एट गोशा महल स्टेडियम इन नम्पल्ली इन हैदराबाद यस्टरडे. द इवेंट वॉज अटेंडेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ब्रिकामरका, मिनिस्टर्स, MPs एंड सेवरल MLAs. द हॉस्पिटल इज डिजाइन टू अकोमोडेट 2,000 beds with 29 major and 12 minor operation theatres, advanced robotic surgery units and a dedicated transplant theatre. The state government took the decision to construct a new hospital in place of the old hospital located in the heritage building. Chief Minister Rewant Reddy took the decision to preserve the existing building as a heritage structure. Over to Calcutta, Naeem.
जी, केंद्रीय बजट 2025-26 आज पेश किया जाएगा. लोगों को उम्मीद है कि ये जन केंद्रित बजट होगा जहां क्रय शक्ति बढ़ेगी. पश्चिम बंगाल के आम लोगों ने कहा कि रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए महंगाई सीमा के अंदर होनी चाहिए. इसके अलावा यदि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उपभोग में भी खुद ही वृद्धि होगी. उज्ज्वला योजना के तहत LPG गैस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए. विभिन्न जिलों के लोगों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए विभिन्न पहल चल रही है. राज्य को कई ट्रेनें मिली हैं और नई सेवाएं शुरू की गई हैं. उनकी इच्छा है कि ये जारी रहनी चाहिए.
Welcome back to Aaj Savere, friends. Over to some sports news now. In men's cricket, India defeated England by 15 runs in the fourth T20 International in Pune last night, taking an unassailable 3-1 lead in the five-match series. We have a report.
The Indian cricket team achieved another remarkable milestone yesterday, securing their 17th consecutive T20I series win at home. Chasing a target of 182, England were bowled out for 166 runs, courtesy of a disciplined bowling performance by the host. Earlier, after being put into bat, India posted 181 for 9 in their allotted 20 overs. Shivam Dubey's all-round performance earned him the Player of the Match award. In some more cricket news, legendary former cricketer Sachin Tendulkar will be honoured with the BCCI's Lifetime Achievement Award at the board's annual gala in Mumbai today. Tendulkar, aged 51, will become the 31st recipient of this prestigious honour. Moving on to the world of chess, in the Tata Steel Chess Tournament, world champion D. Gukesh maintained his half-point lead at the top with a comfortable draw against China's Wei Yi after round 11 in Waikanse, the Netherlands, yesterday. Meanwhile, R. Pragyananda outplayed top-seeded American Grandmaster Fabiano Caruana to close in on the leader, keeping the title race alive. And finally, exciting news for winter sports enthusiasts. The Indian government has approved the participation of the national contingent in the 9th Asian Winter Games, set to take place from February 7th to 14 in Harbin, China. This is the first occasion where the government has formally extended financial support for the country's participation in the Asian Winter Games. Manik Sharma, Akashvani News, Delhi.
In the Hockey India League, the Hyderabad Tufans stormed into the final after defeating JSW Surma Hockey Club 3-1 at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela last evening. The Hyderabad Tufans will face Shrachi Rar Bengal Tigers for the title today. We have a report.
In the Men's Hero Hockey India League 2025, Hyderabad Tufans got the better of JSW Surma by a 3-1 margin. In the semi-final, Hyderabad Tufans' goal was impenetrable with the young goalkeeper Vikramjit Singh doing a great job. His defense was fantastic. In the fourth quarter, JSW Surma got 10 penalty corners, but they were not able to penetrate the goal of the Tufans as the goalkeeper Vikramjit stood like a wall, spotting all the attempts. Towards the fag end of the match, with 50 seconds left for the match to be over, Harmanpreet Singh finally netted the 15th penalty corner to reduce the margin to 3-1. Hyderabad Tufans will play Karachi Rar Bengal Tigers in the finals, and JSW Surma will play against Tamil Nadu Dragons today for the third and fourth place. JSW Surma will play against Tamil Nadu Dragons today at 5:45 p.m. for the third and fourth place, and Karachi Rar Bengal Tigers will play against Hyderabad Tufans at 8:15 p.m. for the title match. This is V. Andrew reporting for Akashvani News.
और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जानने का वक्त है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घना कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में आज धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. कोलकाता में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have fog or mist in the morning. The minimum temperature was 18 degrees Celsius. The maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और अब एक नजर डाल लेते हैं आज यानी एक फरवरी के इतिहास पर. 1786 को एक फरवरी वाले दिन लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने. 1827 को कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना हुई.
1831, the first fine arts exhibition by Brush Club was held in a public library of Calcutta. And in 1855, East India Railways were held for formal inauguration. Howrah Station was opened. Then in 1881, the prestigious St. Stephen's College in Delhi was established. And in 1884, the first 10 volumes of the Oxford English Dictionary was published in London.
और अब हमारा वक्त हो चुका है कि हम
No, you have more of items, right?
जी. 1884 को आज ही के दिन डाक बीमा योजना लागू हुई और 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी भारत के वॉयसराय को दी। 1964 में भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई।
In 1942, during World War II, the Voice of America broadcast its first program to Europe, relaying it through the facilities of the British Broadcasting Corporation in London. And in 1949, the Press Trust of India took over the Associated Press of India. And in 1977, the iconic tourist attraction of Delhi, the National Rail Museum, celebrating the history of train transport in India, was established. And also, same year in 1977, on 1st February, the Indian Coast Guard was established to prevent seaborne smuggling of goods, which were hampering India's domestic economy. On 18th August 1978, Parliament of India passed the Coast Guard Act, which came into immediate effect.
1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पतनन प्राधिकरण का गठन हुआ। 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया। तो ये थी कुछ खबरें हमारे इतिहास के बारे में जो 1 फरवरी से जुड़ी हुई हैं। और अब हम बात करते हैं उन हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है, जिसमें सबसे पहला नाम हम ले रहे हैं कल्पना चावला का। कल्पना चावला जिनकी आज पुण्यतिथि है, एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थीं। वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थीं। कल्पना की पहली अंतरिक्ष उड़ान STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल से संपन्न हुई और उसकी अवधि 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 थी। कल्पना की दूसरी और अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से ही आरंभ हुई। ये 16 दिन का मिशन था। उन्होंने अपने सहयोगियों सहित लगभग 80 परीक्षण और प्रयोग किए। वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कल्पना समेत 6 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। कल्पना चावला को उनके सम्मान में जो पदक दिए गए उनमें से खास हैं कॉन्ग्रेशनल अंतरिक्ष पदक के सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक।
1550, birth anniversary of Scottish mathematician and theological writer John Napier, who originated the concept of logarithms as a mathematical device to aid in calculations. He began working on logarithms probably as early as 1594, gradually elaborating his computational system whereby roots, products and quotients could be quickly determined from tables showing powers of a fixed number used as a base. Indeed, Napier changed the world of mathematics. He is also credited with bringing the decimal point into common use. And 1918, today is also the birth anniversary of Scottish-born writer Muriel Spark, best known for the satire and wit with which the serious themes of her novels are written. Her notable works include The Go Away Bird and other stories, Memento Mori, The Comforters, The Girls of Slender Means, etc. Spark was made Dame Commander of the British Empire in 1993.
और आज ही पुण्यतिथि है नैन सिंह रावत की। नैन सिंह रावत हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय थे। वो 19वीं शताब्दी के उन खोजियों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए हिमालय के क्षेत्रों की खोजबीन की। नैन सिंह रावत कुमाऊं घाटी के रहने वाले थे। उन्होंने नेपाल से होते हुए तिब्बत तक के व्यापारिक मार्ग का मानचित्रण किया। उन्होंने ही सबसे पहले ल्हासा की स्थिति और ऊंचाई ज्ञात की और तिब्बत से बहने वाली मुख्य नदी स्वांगपो के बहुत बड़े भाग का मानचित्रण भी किया। नैन सिंह रावत को एक एक्सप्लोरर के रूप में ही याद नहीं किया जाता, बल्कि हिंदी में आधुनिक विज्ञान में अक्षांश दर्पण नाम की एक किताब लिखने वाले वो पहले भारतीय थे। ये पुस्तक शोध कार्य करने वाली पीढ़ियों के लिए एक ग्रंथ के समान है।
1934, birth anniversary of Isaac Don Everly, guitarist, singer of the immensely popular American rock and roll duo, the Everly Brothers. That's Don and his brother Phil. The Everly Brothers had a great career, entertained fans with their chartbusters like Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, When Will I Be Loved, etc. Of course, two dedicated musicians harmonizing together with their songs accompanied by simple guitar parts inspired and influenced more musical acts like the Beatles, Simon and Garfunkel, and many more. A snatch of Wake Up Little Susie.
What are we gonna tell your pa? What are we gonna tell our friends? Like we do.
go home.
आज जयंती है अवतार किशन हंगल की, जिसे भारतीय सिने प्रेमी एके हंगल के नाम से ज्यादा जानते हैं। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार थे एके हंगल। 1967 से हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा रहने वाले हंगल ने लगभग 225 फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म परिचय और शोले में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं शोले की, तो क्यों ना उनका एक संवाद इसी फिल्म से, वो वाला सुन लें जिसके बिना उनकी बात अधूरी रह जाएगी।
ओ बसंत,
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
इमाम साहब।
कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ,
आप आप आइए मेरे साथ। आइए।
क्या हुआ, क्या बात है बेटा, ये कहाँ लिए जा?
अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।
हाँ सुन लो,
और तुम भी सुन लो गांव के लोगों, गब्बर की ये चिट्ठी, रामगढ़ के वासियों देख लो, ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी।
उनका ये संवाद इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आज भी बच्चे बच्चे की जबान पर है। भारत की आजादी की लड़ाई में भी सुभद्रा इन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी की थी। 1930 से 1947 के बीच स्वतंत्रता संग्राम में ये सक्रिय रहे और दो बार इस सिलसिले में जेल भी गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पेशावर में काबुली गेट के पास एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हंगल भी उपस्थित थे। फिल्मों में आने का कुछ यूं है कि बहुत देर से, यानी कि 50 वर्ष की उम्र में हिंदी सिनेमा में आए। उन्होंने 1966 में बासु चैटर्जी की फिल्म तीसरी कसम और शागिर्द में काम किया। इसके बाद उन्होंने कुछ सिद्धांतवादी भूमिकाएं निभाई। 70, 80 और 90 के दशक में उन्होंने प्रमुख फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाकर अपने अभिनय की छाप छोड़ी, और इसीलिए उनके काम को देखते हुए 2006 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। उनका नाम अवतार किशन हंगल था, तो अवतार फिल्म में ही उन पर फिल्म आएगा। एक छोटा सा गाने का कुछ लाइनें सुनते हैं।
यारो उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यार।
Doug Robb, founder lead singer of Californian alternative rock band Hooba Stang, celebrates his birthday today. Formed in Agoura Hills, California, the band enjoys high-energy alternative rock while performing live, but they can slow down for a beauty like this one you're listening to, The Reason, Big Time Smash.
But I continue learning, I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go,
I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you. After that beautiful song, we are celebrating the birthday of the living legend of Japanese jazz, Sadao Watanabe, who turns 92 years of age today. This cheerful man is always smiling, as is proved by his album covers right from early 60s till now. Yes, friend, this saxophonist is often shown with a joyous smile on his face. Watanabe started on the clarinet while in high school, switching to alto sax at 18, becoming a professional musician 2 years later. Besides saxophone, Watanabe also plays the flute, and he's well known for his bossa nova style and his collaborations with world musicians. Among his awards are the Order of the Rising Sun, Imperial Medal of Honor for Contribution to the Arts, and the Fumio Nandri Award. Here goes a very pretty samba tune, Samba de Orfeu.
आज ही जयंती है अब्बास तैयब जी की, भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वो क्रांतिकारी जो अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखवा चुके हैं। ये गुजरात से थे। 34 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन देशी रियासतों के न्यायिक सेवा में विदेशी ठाट बाट के साथ रहे, लेकिन आखिर में गांधी जी के प्रभाव से वो सत्याग्रही बन गए और उन्होंने जेल की सजाएं भोगी। एक संपन्न परिवार से थे अब्बास तैयब जी, इसीलिए सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में ही उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया और वो वहां से विदेशी आचार विचार सीखकर और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और वडोदरा रियासत की नौकरी शुरू की। 1913 में वहां के मुख्य न्यायाधीश बने। 64 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन के समर्थक बन गए और 9 जून 1936 को उनका निधन हो गया। और आज ही जन्मदिन है सतपाल सिंह का, भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान। 1982 के एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता रह चुके हैं। वर्तमान में ये पहलवानों के प्रशिक्षण में लगे हुए हैं और उन्हें जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है उनमें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म भूषण भी शामिल हैं। और इसके साथ ही बस वक्त ये कह रहा है कि अनुमति ले लीजिए अपने 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 श्रोताओं से, तो मुझे नईम अख्तर और मेरे साथी सुभद्रा रामचंद्रन को कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।